விவாசாலம் தங்கும் நங்கிருந்தமே பரமாயமாகும் ஸ்ரீமன்மதனகோபாலம் பிருந்தாரண்யபுரந்தரம் ஸ்ரீகோவிந்தம் ப்ரபதேஹம் தீனாநிக்ரஹகாரகம் வந்தே முகுந்தமலயம் ததலாயகாக்ஷம் குந்தேந்துஷங்கதசனம் சிசுகோபவேஷம் இந்திராதிதேவனவந்திதபாதபீடம் விருந்தாவனாலயமஹம் வசுதேவசுந்தரம் நவஜனகரவரணம் கல்பகோத்வாசிகரணம் விகசிதநளினாசியம் விஸ்புரன்மந்தஹாஸ்யம் கனகருசிதுகூலம் சாருவர்ஹாவசூலம் கமபி நிகிலசாரம் ஓம் ரூபீகுமாரம் வம்சீவிபூஷிதகராநவநீரகாபாத் ீதாம்பராபிம்பலாதரோஷ்டாத் பூர்ணேந்துசுந்தரமுகாதரவிந்தநேத்ராத் கிருஷ்ணாத்மதம் கிமபி தத்துவமஹம் நஜானே உத்தாயோத்தாய கிருஷ்ணஸ்ய சிரஸ்ய பாதயோ பதம் ஆஸ்தி மஹித்வம் ப்ராக் த்ருஷ்டம் ஸ்மிருத்வா ஸ்மிருத்வா புனப் புனஹம் சமீரதோத்தாய விமிருஜலோசனே முகுந்தமுத்வீக்ஷ விநம்ர கந்தரஹ கிருதாஞ்சலி ப்ரஸ்ரயவான் ஸமாஹித ஸவே பதோ கதகதயைலதேலயா ஜகத் ஸ்ரஷ்டா பிரம்மா ஜி கா ஹிருதய விகலித் ஹோ கயா ஔர் வே பகவான் கே சரண கமலோ மே லுட் படே லோட் கயே உன்கி விசித்திர தசா ஹோ ரஹி ஹை வோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சந்திர கே सौंदर्य माधुरी को देखकर उनकी लीला को देखकर अत्यंत मुग्ध सर्वथा अभिमान शून्य होकर चरणों में लोटने लगते हैं। कभी जब ये मन में आता है ऐश्वर्य भगवान का तो चरणों में गिर पड़ते हैं और गिरे ही रह जाते हैं, बार बार धूल में लौटते हैं और जब फिर माधुरी की स्मृति आती है तो उठकर घुटने टेके यूं देखते हैं श्री मुखारविंद की ओर। तो इस प्रकार से कभी चरणों में लौटते, कभी उठकर मुखारविंद को देखते, न मालूम कितनी बार उठे और कितनी बार ये बैठे पड़े। इस प्रकार ये वंदना भावमयी वंदना चलती ही रही। अब वो भगवान की लीलाओं को देखकर उनके मन में कई भाव साथ साथ उठ रहे थे, अपने अपराध का ध्यान, कितना मैंने अपराध किया, अपनी अभिमान का ध्यान, मैं दिन की माया से बंधा हुआ निरंतर सृष्टि रचना में लगा रहता हूं, उन भगवान को अपनी माया से मोहित करने आया। फिर भगवान का भक्ति वात्सल्य, ये प्रेम रस आस्वादन की भगवान की चेष्टा, प्रेमाधीनता, ये सब बार बार उन्हें सबकी स्मृति होने लगी। फिर सोचा मन ने कि ब्रह्मा का पद तो छिन गया, बड़ा अच्छा हुआ, परंतु ये कृष्ण स्मृति रूप जो परम निधि है, ये कहीं मेरे अंतकर्ण से अब विलुप्त न हो जाए, ये कहीं न चली जाए। तो मन में करुणा की लहरें उठी, देखा उस तरफ तो देखा श्याम सुंदर के मुखमंडल पर कहीं भी क्रोध का चिन्ह नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार से ये दिखाई नहीं दिया कि मुझ पर नाराज है। वही स्मित मुख है, उसी प्रकार से आंखों से उनके करुणा की, कृपा की ज्योति निकल रही है। तो ब्रह्मा जी गदगद हो गए फिर, और सोचने लगे कहां मैं अपराधी इतना, और कहां प्रभु का इतना औदार्य। असल में तो ये ब्रह्मा जी का ही नहीं, सभी जीवों का ये अनुभव है। उस अनुभव को ये कभी पहचान लेते हैं तब इनका भाग्योदय होता है। निरंतर हम अपराध करते हैं और निरंतर वो अपनी उदारता बस क्षमा ही करते हैं। एक बंगाल के कवि ने कहा, आमार स्वभाव अपराध करा, तुम्हार स्वभाव क्षमा, जुगे जुगे ओ जनों में ये संबंध तुम्हारा। मेरा स्वभाव है अपराध करना, स्वभाव है, अपराध ही अपराध भरा है, और तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना, और तुम्हारा और हमारा ये संबंध है। मैं तुम्हारा अपराध ही करता रहूं और तुम क्षमा ही करते रहो, ये संबंध युग युग से, जन्म जन्म से चला आ रहा है। तो जब कभी इस संबंध का ठीक ठीक भान होता है मनुष्य को, तब वो भगवान के चरणों में लुट पड़ता है। फिर दूसरी ओर उसकी वृत्ति नहीं जाती, कहां मेरा अपराध और कहां इनका औदार्य। तो ब्रह्मा जी महाराज के अपने अपराधों का पूरा ध्यान आ गया, कितना बड़ा अपराध मैंने किया, ये अपने सखाओं के साथ स्वच्छंद भोजन कर रहे थे, खा रहे थे, खेल रहे थे, ये तो सर्वेश्वर हैं, पर उन सखाओं को मैंने इनसे दुलग कर दिया, उन बछड़ों को जो इनके नेत्रों के सामने इनकी दृष्टि से पवित्र होते हुए प्रेम लाभ करते हुए यहां घास चर रहे थे, उनको मैंने अलग कर लिया। कितना बड़ा मेरा अपराध, अपराध से, लज्जा से, और फिर उनके औदार्य को, प्रेमल स्वभाव को, अपने प्रति उनकी आंखों से झरती हुई करुणा की धारा को देख करके ब्रह्मा जी की आंखें कृतज्ञता से, स्नेह से, शरणागति से भर आए, और ब्रह्मा नमित हो गए, उनके कंधे झुक गए, रोम रोम में बा मानो उनके विनय का स्रोत बह चला, उनकी अंजलि बंध गई, हाथ जुड़ गए, और वे घुटने टेक कर समाहित चित्त से भगवान की महिमा का गान करने लगे। वो उपक्रम कर रहे थे ब्रह्मा जी के अंगों में फिर कंपन प्रारंभ हो गया। आंखों से बार बार आंसू पोंछते हैं, पर वो ऐसा हृदय विगलित हो गया कि वो हृदय का सारा रस मानो आंसू की धारा बनकर बहने लगा। ब्रह्मा की वाणी फिर रुद्ध हो गई, फिर परे चरणों में और अपने आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगे, धोने लगे, गदगद कंठ हो गए। चिनय रथोत्थाय विमृज लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलि प्रश्रयवान समाहित सवे प्रथुर गदगद नील तेलया। प्रभु रूप तेज प्रभाव वैभव सुमिर ही सकुचात हैं, पुन उठे निज कर पूछ लोचन मिरख मुख हर खात हैं। अति नम्र सिर कर जोर जुग सह विनय कंपित गात हैं, पुन प्रेम गद गद पुलक तन नित करुण हित अकुलात हैं। फिर भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से थोड़ी शांति हुई, धैर्य आया, कुछ साहस बटुरा और किसी तरह से उन्होंने अपने को संभाला। मनो गिरे गिरे जा रहे थे, किसी प्रकार से अपने को संभाला। अब वाणी ने भगवान की सेवा करने का मन में, वाणी के मन में उत्साह हुआ। वाणी उनके सरस्वती देवी भगवती ब्रह्मा जी के जीवाग्र पर बैठ गई। आज ब्रह्मा की वाणी बंद हो गई थी इस समय, अगर भगवान लीला विहारी वाणी का फिर से उद्बोधन न करते तो वाणी न जगती। तो भगवान के कृपा दृष्टि से माया लीला की प्रेरणा से वाणी उनकी जगी, गदगद हो गए और गदगद कंठ से भगवान का स्तवन करने लगे। यहां से ब्रह्मस्तुति प्रारंभ होती है। ब्रह्मस्तुति में जो जो श्लोक रस के इनकी लीला के हैं उन पर कुछ विशेष थोड़ा सा कहने का विचार है और बाकी श्लोकों का अर्थ पढ़ लिया जाएगा। बड़ी लंबी चीज है, कई दिन लग सकते हैं, तो वो न लगाकर जल्दी समाप्त करना है। तो ब्रह्मा जी गदगद कंठ हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर देखा वो सुंदर श्याम सुंदर रूप। ब्रह्मा जी ध्यान करते थे आज तक भगवान के ऐश्वर्य रूप का, नारायण रूप का। कभी वो ध्यान में आता, कभी नहीं आता। दर्शन तो बड़े दुर्लभ ब्रह्मा जी को नारायण रूप के भी। तो आज जो इनका स्वरूप सामने है ये अभूतपूर्व है। कभी इन्होंने इस रूप को देखा नहीं, आज देखकर मानो निहाल हो गए। तो सोचा कि वो जो ऐश्वर्य का रूप है वो तो बैकुंठ बिहारी रूप है, बड़ा सुंदर क्षीरोदशायी रूप है, पर आज तो वो रूप तो हजारों हजारों ने अपने में दिखला दिए, सारे नारायण दिखला दिए उन्होंने। चतुर्भुज नारायण अपने अंदर, तमाम विश्व में नारायण नारायण भरे, तमाम विश्व नारायण हो गए। ये इस रूप की महिमा है। तो ब्रह्मा जी नमस्कार किया। नौमीद्यते भृतपुषे तविदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पुष्पांगजाय। ईद्य मन स्तवनीय अभृतपुषे नव नीरद श्यामल विग्रहाय कडदंबराय स्थिर दामिनीवत पीतवर्ण वसन परिधायने गुंजावतन से पर पिछल सन मुखाये गुंजा फल रचित कर्ण भूषण अभियान गुंजा माला वेष्टित चूड़ो पर विराजित मयूर पुच्छ शोभमान वदनाय वन्य सहजे वृंदावनीय पत्र पुष्प रचित माला धारिणे कवल वित्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री कवलम दग्धोजन ग्रास वेत्रम गवाज पशु नियंत्रणार्थ लघु यष्टि विषाणम श्रृंगम वेणु मुरलीश्च तैव लक्ष्म असाधारण चिन्हान तै श्री असाधारण शोभायश्च तस्मै मृदुपदे सुकोमल लघु चरणाय पशुपांकजाय नंदात्मजाय ते तुभ्यं त्वामेव प्राप्त मित्यर्थं मित्यर्थः नौमि स्तौमि। भगवान की वंदना की। इसमें भगवान के जो नाम बताए जो जो विशेषण दिए जिन जिन स्वरूप सौंदर्य का वर्णन किया ये बड़े मधुर है। वैकुंठ में क्षीर सागर में निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप में इन सारे लक्षणों की कहीं पर भी कल्पना नहीं। ब्रह्मा ने ये कल्पना की भगवान का स्वरूप सौंदर्य भगवान की प्रेम रस माधुरी भगवान की प्रेमाधीनता और भगवान का सर्वज्ञ का अद्वित्व स्वीकार ये देखा और चाहा कि बस यही रूप यही चरणारविंद मुझे प्राप्त रहे मेरे हृदय से ये कभी निकले नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले वंदनीय। ब्रह्मा जी ने कहा हे ईड्य ते नवमी स्तवनीय। तो स्तवनीय तो भगवान के सभी स्वरूप हैं। यहां तक कि हम किसी भी देवता को भी अगर नमस्कार करते हैं तो वो नमस्कार भी भगवान को ही पहुंचता है। हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा भी भगवान की ही होती है। हम किसी देवता का यज्ञ करते हैं तो यज्ञ भोक्ता भगवान ही है। भोक्ता अयम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ब्रह्मा जी ने बहुत बार सुना गाया कहा उपदेश किया आकाश प्रतितम दूयम पिता गति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। कहीं भी हाथ जोड़ो उन्हीं को जोड़ता है। जैसे ये स्वाभाविक ही मेघ कहीं बरसे अगर वो जल की धारा बनता है समुद्र में जाता है। इसी प्रकार ये पन्न देवता भक्ता यजंते सर्वज्ञान वेता तीत नाम लगन। भगवान ने गीता में कहा कि किसी भी देवता जब कोई पूजा करे वो पूजा मेरी ही होती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सर्वात्मक हैं आप सबके मूल हैं और आप ही जगत भर के लोगों के द्वारा नास्तिकों के द्वारा भी नास्ति रूप में या आगे कहेंगे इसी में आपकी प्रश्न वो कहते हैं नहीं है नहीं है जहां पर है वही आप हैं। तो अपनी अपनी इच्छा रुचि वासना के अनुसार लोग आपको पूछते हैं। इसलिए सारे जगत के पूजनीय वंदनीय स्तवनीय आप ही हैं। योगी ज्ञानी कर्मी सकाम भक्त ये अपनी अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए अज्ञान नाश के लिए सब आपकी पूजा करते हैं और उनको उनकी अभिलषित वस्तु प्राप्त होती है। मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति भोग चाहने वालों को भोग आप देते हैं परंतु भगवान मैं तो केवल चाहता हूं आपके चरणों की प्राप्ति। आपकी कृपा से आपके चरणों के तृप्त मेरा कुछ भी अभीष्ट नहीं है, निरंतर मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे, आपके चरणार विंद युगल मेरे हृदय में निरंतर बसे रहें, मेरे मन में कभी भी भुक्ति मुक्ति की बात आवे ही नहीं। ये जो भगवान के चरण प्राप्त करने की लालसा है, इच्छा है, ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि इच्छा है। इन चरणों में इस प्रकार की आसक्ति हो जाए कि उन चरणों के सिवा कहीं और किसी और भी चित्त की वृत्ति जाए नहीं, सारी ममता सारी आसक्ति उन चरणों में जा करके ही संलग्न हो जाए, केंद्रित हो जाए, रुक जाए। तो ये आज देखा नहीं होने कि ये भगवान जो स्तवनीय है, वेद वेदज्ञ ज्ञानी ऋषि तपस्वी मुनि देवता सब जिनका आराधन करते हैं पूजन करते हैं, तो उनके साथ इन चरणों को लेकर ये कहीं घूमते नहीं, उनको इस प्रकार का साथ बैठ करके खाने खिलाने का, हंस हंस कर मुंह में कौर देने और लेने का ये रस कहीं भी नहीं देते भगवान, किसी को दिए ही नहीं। जितने अवतार इससे पहले हुए और जितने भगवान के दिव्य लोक स्थित स्वरूप हैं, उन किसी में भी ये चीज आज तक नहीं आई। तो कहते हैं कि आप भगवान अनंत ऐश्वर्य और अनंत माधुर्य के महासिंधु हैं, कोई संदेह नहीं, परंतु सारी लीलाओं का सारी मूर्तियों में प्रकाश नहीं होता। ये करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है, परंतु प्रत्येक भगवान के श्री विग्रह में कृपा का पूर्ण विकास नहीं होता। जिस प्रकार से भक्त भगवान को देखना चाहता है, इसी प्रकार से दीक्षा रंग रथा साधन भी होता है। जैसे राजा एक राज दरबार में बैठ करके राजा का काम करता है, वही अपने महलों में मवेशियों के साथ विलास रसाचरण करता है, वही कहीं किसी बगीचे में प्रमोद कानन में अपने बंधुओं के साथ मित्रों के साथ आमोद करता है, और वही कहीं बाहर निकलता मन गंगा स्नान करने गया तो भिखारियों को वो बड़े प्रेम से पास खड़ा रहकर उनके दुख पूछता और उन्हें दान करता है। तो ये सब जैसे अलग अलग समय समय के स्थान स्थान के विभिन्न स्वरूप हैं वे कई, पर वो गंगा किनारे का भिखारी यदि राज दरबार में जाना चाहे तो वह दान तो मिलेगा ही नहीं, वो पहलेदार पहले उसको बाहर का बाहर लौटा देंगे। पर गंगा स्नान के लिए गए हुए राजा के दान में कोई पहलेदार वहां बाधक नहीं है। वो महल के सारे नौकर चाकर, महलों के नौकर ये दरबार का काम नहीं कर सकते। दरबार में तो दरबारी नौकर जो होते हैं, वे यथास्थान कौन को कहां बैठाना है, किसको क्या आसन देना है, किसके लिए कौन सा स्थान है, कौन कब बोलेगा, कौन कब उठेगा, यथा आदि सब, वहां राजा का अपना काम नहीं, दरबार का काम। तो वहां दरबारी नौकर सारे विधिवत कानून को मानते हुए सारा काम करते, पर तो वही राजा महल में चले गए। अब महल में दरबारी नहीं आ सकते, वो कानून सारा काम करते हैं, नियमित विधिवत सारा काम करते हैं, पर वो महल में आकर के वो कुछ काम करना चाहें तो वो महल के अंतरंग काम में बाधा मानी जाती है। तो वहां जो महल के नौकर हैं उनको पास बैठा करके उनसे काम करवाते हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं। वहाँ बच्चे हैं वो राजा के सिर पर खेलते हैं, दरबार नहीं खेल सकते। दरबार में राजकुमारों के लिए अलग स्थान है, वहाँ जाकर के अपना आने से बैठ जाए, नौकर चाकर साथ रहे, वहाँ से उठा के ले जाए। राजा के बक्षस्थल पर वो नहीं वहाँ सवार हो सकते, दाढ़ी मुँह से नहीं खींच सकते उनकी, पर घर में खींच लेते हैं। तो जहाँ जिस प्रकार का लीला का आयोजन होता है उसी प्रकार स्वरूप होता है। तो ब्रह्मा जी ने आज ये नई से नई चीज देखी, उनके मन में आया कि ये तो कभी हमने देखा ही नहीं, कल्पना में नहीं ये चीज की इतने बड़े नतजिन के समान कोई है और बड़े की तो कोई बात ही नहीं। ऐसे जो असमूर्ध महिमानी तो भगवान, ये भगवान छोटे छोटे बच्चों की बार बार स्मृति होती है, बच्चों के साथ हंसते हुए उनका कौर अपने मुंह में ले रहे, अपना कौर उनके मुंह में दे रहे, उनका पत्ता छीन रहे, किसी के कपड़े का छोर खींच रहे, हंस रहे, हंसा रहे, और कोई भी मान मर्यादा नहीं, बच्चों से बराबरी का उनके साथ बर्ताव करें। तो इस प्रकार के रूपों को, इस प्रकार की बातों को देखकर ये ब्रह्मा जी ने समझा कि ब्रज में जो भगवान हैं ये अपरिसीम इनका माधुर्य है, इनका भक्तवात्सल्य और इनकी अयाचित करुणा, कृपा की भीख नहीं मांगनी पड़ती, इनकी कृपा स्वयं पीछे पीछे फिरती है रक्षा करने के लिए अपने सखाओं की। अरे घुस गए वो अजगर के मुंह में, और अजगर के मुंह में जब घुसने लगे उस समय किसी एक ने कहा बालक ने कि तुम इसको बन की शोभा मान रहे हो, अगर कहीं अजगर हुआ तो निकल जाएगा। तो उसने कहा कि तुम भूल गए कन्हैया भी पीछे है, निकल जाएगा तो क्या होगा, जैसे बकासी की दशा हुई वैसी दशा उसकी होगी। तो भगवान की कृपा स्वयं जिनके पीछे पीछे फिरती है अपने को कृतार्थ करने के लिए, भगवान की कृपा से सब कृतार्थ हैं, और इन भगवत जनों की सेवा करके कृपा कृतार्थ हो, ये बड़ा अंतर है। भगवान की कृपा भी चाह करती है, वो कृपा बेचारी थक जाती है ना, कृपा तो रस नहीं आता, वो तो देते 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 थक जाती है। यद्यपि उसमें थकावट की कल्पना ठीक बैठती नहीं, क्यों कि अनंत है, असीम है, भगवान की कृपा अनंत है, असीम है, उसका कहीं पार नहीं, उसमें कहीं कमी नहीं आती, परंतु उस कृपा को कहीं कृपा नहीं मिलती, वो कृपा देती रहती है। पर ये जो भक्तजन हैं, भगवान के प्रेमी जन, ये कृपा की परवाह नहीं करते, इनको किसी भी स्थिति में रखा जाए ये कभी ऐसा नहीं मानते कि भगवान की कृपा आकर के हमारी रक्षा कर दे, ये कृपाकांक्षी नहीं है। कृपाकांक्षी होते हैं श्रद्धालु भक्त, पर भगवान की कृपा बहुत बड़ी चीज। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी समस्त प्राणियों पर भूत मात्र पर असाधारण अहितुक नित्य कृपा है, सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वानां शांति मृक्षति, समस्त प्राणियों का मैं सर्व सुहद हूं, इस बात को जान ले तो उसे शांति मिल जाती है। हम लोगों को तो कृपा पर विश्वास ही नहीं है, भगवान की कृपा का न चाहना ये कल्पना तो बहुत दूसरी चीज है, या तो अत्यंत पाप कल्पना है ये, और या जहां विशुद्ध प्रेम का प्राकट्य है वहां इस प्रकार की कल्पना हो सकती है। हम लोग तो भगवान की कृपा पर विश्वास करते तो कभी चिंता आती नहीं, कभी शोक विषाद आता ही नहीं, कभी भय आता ही नहीं, वो तो सब प्रकार से शांति मिल जाती। वो कहती हैं कि बस ये अयाचित कृपा भगवान की सब पर सदा है, स्वयं सर्वभूताराम जात्वा माम शांति मृक्षते। जिसने भगवान की कृपा को जान लिया और वो कृपा प्राणी मात्र पर है, किसी एक पर नहीं शोभा, तो इसको जिसने जान लिया वो कृपा को पा गया, जान गया ना कि मुझ पर भी वैसी ही कृपा है। और जिन पर उसकी, जिस पर उनकी कृपा, उस पर सबकी कृपा, तो वो तुरंत उसको शांति प्राप्त होती है। जात्वा नाम शांति मृक्षति। तो हम लोगों को तो कृपा पर विश्वास ही नहीं है, हम लोग तो उनकी कृपा की आकांक्षा करने तक के लायक भी अभी तक नहीं बढ़े। हम लोगों को तो विषय कृपा चाहिए, भोग कृपा चाहिए, विषयों की कृपा चाहिए। हम उन्हीं की सेवा में, विषयों की सेवा में, विषयों के क्षेत्र में, उनकी पूजा में रात दिन लगे रहते हैं। ये तो लोकोत्तर चीज है कि जहां भगवत कृपा की अपेक्षा नहीं, कृपा को कृतार्थ करने के लिए कृपा स्वीकार की जाती है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमने देखा कि ये बच्चे परवाह ही नहीं करते और इनकी कृपा पीछे पीछे इनके दौड़ा करती है कि कहीं हमको सेवा का मौका मिल जाए, कहीं हमको सेवा का मौका मिल जाए इन सखाओं की, तो हम निहाल हो जाए। इस प्रकार की कृपा को देखा, फिर देखा उनकी, याद आया वो नवनीत चोरी है? सारे जगत के अधीश्वर सर्वेश्वर भगवान वे गोपांगनाओं के घरों में घुस घुस कर वो चुरा चुरा कर नवनीत खाते हैं। उनके मन में आया कि ये बड़ी नवीन नैवेद्य ग्रहण की पद्धति ये यहीं पर भी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोग जब वेद के मंत्रों द्वारा जब यज्ञ में भगवान का स्तवन करते हुए भगवान के लिए भोग अर्पित करते हैं, तो मन में कल्पना करते हैं जिसे भगवान ने ग्रहण कर लिया होगा, पर प्रत्यक्ष होकर के भगवान खाएं ये तो कभी आज तक हमने देखा नहीं। और फिर भोग लगाने में भी कितनी शुद्धि चाहिए, भोग शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, सब प्रकार की सामग्रियां हो, चौकी हो, स्वर्ण थाल हो, न मालूम क्या क्या चीज हो। ये भगवान इसी में कहेंगे आगे, एक भक्त ने देखा भगवान को इस रूप में। वो तो ये यहां तो कोई बात इतनी, यहां तो बोले वो गोपी ने चाहा कि तुमको मक्खन तुम खिलाना चाहती हूं और तुम्हारे लिए ये मक्खन है लाला, परंतु हम उसे ले करके तुम्हारे सामने चौकी पर रखें और हाथ जोड़ के खड़ी हूं और तुम भोग लगाओ, इस प्रकार हम ये देना चाहती हूं। हमको चाहती है कि मक्खन निकाल कर रख दें और तुम उस मक्खन पर लुब्ध होकर, मक्खन के लोभी बनकर, नवनीत के लोभी बनकर तुम हमारे घर में चुपके से आओ और हम छिप कर खड़े रहें, और तुम जैसे लोभी आदमी कहीं से भी धन ले लेता किसी प्रकार, इसी प्रकार उस नवनीत को चोरी की क्रिया के द्वारा तुम ग्रहण करो और तुम खा लो हमारा, तुम भागो हम तुमको पकड़ने जा, इस पद्धति से तुमको स्वीकार हो तो हमारा मक्खन तुम्हें मिले। भगवान स्वीकार कर लेते हैं, यही पद्धति सही। आज तक ये मर्यादी लोगों के मनों में इस चीज को लेकर संदेह होता है कि भगवान ने चोरी क्यों की। अरे चोरी कहाँ की, ये तो नवीन पद्धति है नैवेद्य ग्रहण की, इसीलिए यहां पर ये नवीन रसधारा इस प्रकार से तो नवनीत चोरी देखी, गोष्ठ क्रीड़ा याद आ गई, ब्रह्मा जी को सारी याद आ गई, गोष्ठ क्रीड़ा कैसे बच्चों के साथ खेले, कैसे ये खुदकते हुए मेंढकों के पीछे पीछे खुद गए, कैसे कैसे ये बंदरों की भांति बंदरों के पीछे पीछे जाए, कैसे हंसों के साथ उनकी चाल चले, ये गोष्ठ लीला। और फिर सबसे बढ़कर उनके मन में आया ब्रह्मा जी के दाम बंधन, जिनके नामा भाष से तमाम अनादिकाल के बंधन कट जाते हैं, वे भगवान स्वयं बंध जाते हैं माता की डोरी से, और पेट बंध जाता है और ऊखल से, ये नवीन बंधन है ना। किसी को आज तक ऊखल से बांधे सुना, ये ऊखल बंधन लीला, ये श्री कृष्ण के ये लीला आत्मविहार में एक अभिनव एक नई चीज, कहीं भी किसी भी अवतार में ये ऊखल बंधन लीला नहीं हुई। माता के मन में ये बात नहीं आई किसी माता के मन में आज तक कि बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा ढीठ हो गया है, इसे ऊखल से बांधो। तो ऊखल से भगवान बंध गए, और उस बंधन लीला में क्या क्या चीजें देखी ब्रह्मा जी ने, वो कहते हमने कोई नहीं देखा, काम देखा, लोभ देखा, भय देखा, पलायन देखा, बंधन देखा। जो नित्य काम पूर्ण काम आप्त काम भगवान, वो माता के स्तनपान के लिए प्रलुब्ध हो गए, और बिना इच्छा के मां की चढ़ गए गोद पर स्तनपान करने लगे। जब स्तनपान में बीच में बाधा आई तब स्वयं क्रोध रूप बन गए, और क्रोध रूप बन के मटके को फोड़ डाला। उसके बाद भय लगा तो भाग के कुठड़ी में छिप गए, लोग आया फिर मक्खन खाने लगे। माता को छड़ी लिए हुए आते देखा तो भले, मां ने पकड़ना चाहा तो पकड़ में नहीं आने भगने लगे, पकड़ लिया तो रोने लगे। वो कज्जल मिश्रित अश्रु धारा वो श्याम सुंदर कपोलों पर बह जली, डर गए, और फिर मां ने बांध दिया। ये लीला हमने आज तक नहीं देखी, ब्रह्मा जी ने सोचा ये लीला आज तक नहीं देखी, ये लीला जिस रूप में हुई है वही हमारा वंदनीय है। बोले हमने भगवान के अपनी बात याद करने लगे ब्रह्मा जी, कि हमने नारायण के नाभि कमल से जन्म लिया, वहां से उत्पन्न हुई, परंतु हमको वो दिखे नहीं। जिनके नाग कमल से हमारा उदय हुआ वो मूल पुरुष हमको दिखे नहीं, फिर हमने उनकी कृपा से मंत्र प्राप्त किया, तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, तीव्र साधना की, तब एक बार गर्भोदशाई नारायण के हमको दर्शन हुए, एक ही बार हुए। और इन बृजाभिनंदन की कितनी कृपा हमारे ऊपर भी, सब पर तो है अजित कृपा कि हमने आज हमने उनके उस नारायण रूपों को असंख्य असंख्य संख्या में देख लिया। एक बार नारायण रूप का दर्शन किया हमने, सो भी मंत्र सिद्धि और कृपा प्राप्त करके, और आज अभी अभी हमने देखा अनंत नारायण रूप, एक दो नहीं लाखों करोड़ों असंख्य नारायण ही नारायण शुभ हमको दिखाई दिए। कहा तुम एक के लिए तरस रहे थे, तो इन भगवान की, इस रूप के भगवान की जो कृपा है ये बस सबसे बड़ी कृपा है, और इन्हीं रूप का, ऐसी भगवान का, उन गोप शिशु भगवान का ही चरण प्राप्त हो जाए हमें, निरंतर रहे, और इन चरणों को हम सदा के लिए हृदय में बांध रख सकें। ये बात इनके मन में आई, तो नोमिदते ब्रवपुषे अब्रवपुषे अब्रवपुषे मने नव नील नीरज भगवान श्यामल सुंदर मूर्ति भगवान ऐसा करुणा समुद्र दूसरा कोई कहीं है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ये स्तवन किया अब्रवपु से तीनों में, ये भगवान मेरी और कोई लालसा नहीं, ये जो आपका नव घन विलंबित घनश्याम सुंदर नवनील सुंदर श्याम ये जो श्री विग्रह है इसके चरणों का ही मुझे निरंतर आश्रय प्राप्त रहे। तो ब्रह्मा जी कदिदंबराया अब्रवपुषेज कदिदंबराया, अब ब्रह्मा जी का ध्यान गया भगवान के वस्त्रों की ओर, पीले वस्त्र। तो ये उपमा दी ना नव नील नीरभ की, नव घनश्याम श्याम सुंदर नए नीले नीले बादलों के समान। तो अब मन में उनके आया, वो जब वस्त्र देखा बोले ये तो बिजली है, बादलों में बिजली रहती है ना, ये नव जलधर श्यामल भगवान जो हैं इनमें जैसे बादलों बिजली, इन नवजलधर में भी ये विद्युत सदा रहती है, परंतु अंतर इतना है कि मेघों में बादलों में जो बिजली रहती है वो बिजली चंचल रहती है, दिखी छिप गई, दिखी छिप गई, बिजली चमकी और छिप गई, स्थिर नहीं रहती। और ये भगवान का पीतांबर जो है ये नित्य भगवान के शरीर पर सुस्थिर रहता है। तो वो बिजली चंचल है, मेघ में रहने वाली बिजली, और ये नव जलधर भगवान में जो पीत वस्त्र रूप चलित है, ये विद्युत है, ये बस ये कृष्ण मेघ की ये सौदागिनी ये नित्य सुस्थिर है, सुशांत है। और फिर दूसरा भाव मन में आया कि भाई सीधी बात ये है एक कि कितनी भी कोई चंचल वस्तु हो अगर उसका संपर्क मेरे में आ गया तो वो स्थिर हो गई। कोई भी जिसका भोग प्रवण चित्त नित्य निरंतर अशांत रहता है और वो अशांति कहीं मिट नहीं सकती भोगों से, ये और सिद्धांत के बाद ध्यान में रहे, हमें चित्त विभ्रांता मोह जाल समावता है। कोई ये चाहे कि अनंत अनंत भोगों को प्राप्त करके हम चित्त में शांति प्राप्त कर लें, बड़े बड़े भोगी बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े देवता सबका ये अनुभव है, सब ये कहते हैं कि क्या करें चीज जो सब मिल गई पर चित्त शांत नहीं है। चित्त शांत क्यों नहीं है कि जो वस्तु विनाशी है क्षणभंगुर है नाश होने वाली है उस वस्तु के साथ चित्त का संपर्क है तो शांति कहां से आवेगी, वो तो नष्ट होने वाली वस्तु है ही। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान मानो ये पीतांबर धारण करके और ये सुस्थिर पीतांबर धारण करके ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई मेरे में चित्त समर्पित कर दे तो सदा के लिए उसे मैं अपने पास रख लेता हूं।